जयपुर, राठौड़ हवेली, हॉल में अब भी वही सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब उस खामोशी में डर के साथ साथ एक फैसले की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। विश्वनाथ अदिति के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब भी ठंडी थीं, चेहरा सख्त और आवाज पूरी तरह नियंत्रित। कुछ सेकंड तक उसने अदिति को वैसे ही देखा, फिर धीरे धीरे बोला, सजा तुम्हें मिलेगी। अदिति ने सिर और झुका लिया, आंसू लगातार गिर रहे थे, पूरे हॉल की सांसें थमी हुई थीं। फिर विश्वनाथ ने साफ और ठोस आवाज में कहा, आज के बाद तुम इस हवेली में नहीं रहोगी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरा माहौल हिल गया। विश्वनाथ, सुषमा देवी लगभग चौंकते हुए उठी, रत्ना देवी भी एकदम सीधी होकर बैठ गईं। ये तुम क्या कह रहे हो? अदिति ने जैसे सुना ही नहीं, या शायद सुनकर भी यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे नजर उठाई, आंखें पूरी तरह भीगी हुईं। पापा, उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन विश्वनाथ का चेहरा नहीं बदला। मैंने जो कहा वो आखिरी है, उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। इस घर में रहने का हक भरोसे से मिलता है, और तुमने वो खो दिया है। अदिति के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई, वो वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल हाली। सुषमा देवी तुरंत उसके पास आईं। विश्वनाथ, ये बच्ची है, गलती हो गई इससे। उनकी आवाज में ममता थी और घबराहट भी। मैं जानती हूं इसे, ये दिल से बुरी नहीं है। उन्होंने अदिति के कंधे पर हाथ रखा। समझाओ इसे, सजा दो, डांटो, लेकिन घर से निकालना। मौसी, विश्वनाथ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी सख्ती थी कि वो खुद रुक गईं। ये कोई छोटी शरारत नहीं है, उसने सीधा कहा। ये प्लान था, सोच समझ कर किया गया। अब उसकी नजरें रत्ना देवी की तरफ उठीं। माँ, आपने ही सिखाया है ना कि इस घर में इज्जत और भरोसे से बड़ा कुछ नहीं होता। रत्ना देवी कुछ सेकंड तक उसे देखती रहीं। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो भी जानती थीं विश्वनाथ जो कह रहा है वो उसी के उसूल हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, सजा जरूरी है, पर इतनी बड़ी सजा? माँ, विश्वनाथ की आवाज अब और भी धीमी हो गई। अगर आज मैंने इसे माफ कर दिया तो कल ये गलती फिर होगी। और तब उसने एक पल रुककर कहा, शायद नुकसान और बड़ा होगा। हॉल में फिर खामोशी छा गई। अदिति अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी नजरें जमीन पर थीं और आंसू बिना रुके गिर रहे थे। उधर एक कोने में खड़े अक्षरा के माता पिता एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अच्छा ही हो रहा है, अक्षरा की माँ ने मन ही मन सोचा, इसी लड़की की वजह से हमारी बेटी। उनकी नजर अनजाने में अक्षरा पर गई, जो थोड़ी दूरी पर चुपचाप खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल खाली, आंखों में कोई भाव नहीं, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। सीढ़ियों से गिरी और याददाश्त चली गई। अक्षरा के पिता के मन में भी वही कड़वाहट थी, अब कम से कम ये घर से जाएगी। दोनों ने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी संतुष्टि थी। तभी आर्यन आगे बढ़ा। अब तक वो खुद को रोक रहा था, लेकिन अब नहीं। पापा, उसकी आवाज मजबूत थी, अगर अदिति इस घर से जाएगी, सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं, तो मैं भी जाऊंगा। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। आर्यन, सुषमा देवी ने घबरा कर कहा, तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन आर्यन रुका नहीं, वो सीधा विश्वनाथ के सामने आकर खड़ा हो गया। वो मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज में पहली बार एक ठोसपन था। गलती की है उसने, मान रहा हूं, पर उसे अकेले इस तरह छोड़ नहीं सकता। अदिति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द के बीच एक नई नमी आ गई। आर्यन, वो बस इतना ही कह पाई। विश्वनाथ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। बाप और बेटे की नजरें मिली, एक तरफ उसूल, दूसरी तरफ रिश्ता। फिर विश्वनाथ ने बहुत शांत स्वर में कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बस चार शब्द, लेकिन उनमें बहुत कुछ था। न गुस्सा, न रोकना, न मनाना, बस एक साफ फैसला। आर्यन ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे उसने भी अपना फैसला पक्का कर लिया हो। हॉल में खड़े बाकी लोग अब पूरी तरह सन्न थे। सुषमा देवी की आंखों में आंसू आ गईं। ये क्या हो रहा है इस घर में? रत्ना देवी ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे वो ये सब देखना ही नहीं चाहती थी। अदिति वहीं खड़ी थी, टूटी हुई, लेकिन अब अकेली नहीं। और अक्षरा अब भी उसी तरह खड़ी थी, खामोश, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन उसकी आंखों के एक कोने में एक हल्की सी हलचल थी, जिसे शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा अलग था। एक रिश्ता टूट चुका था और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा हो चुका था। विश्वनाथ ने एक आखिरी नजर सब पर डाली और बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और टूटते रिश्तों, जिद्दी फैसलों और आने वाले तूफान की आहट के साथ। दूसरी तरफ अतिथि का मायका, शहर के पॉश इलाके में बना वो बड़ा सा बंगला जहाँ हमेशा शान और सुकून रहता था, लेकिन आज ड्राइंग रूम का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। अतिथि सोफे पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ, और उसके सामने उसकी माँ गुस्से से भरी हुई। तुम्हारे ससुर खुद को समझते क्या है? उनकी आवाज तेज थी, गुस्से से कांपती हुई। मेरी बेटी को इस तरह घर से निकाल दिया, इतनी हिम्मत कैसे हुई उनकी? उन्होंने गुस्से में अपना पर्स टेबल पर पटका। मैं अभी बात करती हूँ उनसे माँ, अदिति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज थकी हुई थी लेकिन शांत। माँ एक पल को रुकी। नहीं बेटा, अदिति ने गहरी सांस ली, जो भी हुआ मैंने ही किया। शामली के खिलाफ जो प्लान था उसकी आवाज भर्रा गई, वो मेरा ही था। माँ का गुस्सा एक पल को ठहर गया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, इतनी बड़ी सजा? अदिति ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। सजा तो बनती है ना माँ? उसकी आंखों में फिर नमी आ गई। मैंने गलत किया। कुछ पल दोनों चुप रहीं। फिर अदिति ने धीरे से कहा, लेकिन एक बात है। माँ ने उसकी तरफ देखा। खुशी है, उसने बहुत हल्के से कहा, कि आर्यन मेरे साथ है। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक आई। उसने सबके सामने कह दिया कि अगर मैं जाऊंगी तो वो भी जाएगा। माँ का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। सच? अदिति ने सिर हिला दिया। वो सच में बहुत अच्छा है माँ। उसकी आवाज में अब गर्व और प्यार दोनों थे। फिर उसने धीरे से आगे कहा, और पापा? उसकी आवाज फिर धीमी हो गई। आज वो मुझसे बहुत नाराज हैं। माँ चुप रही लेकिन अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी। वो आर्यन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। उसने नजरें कहीं दूर टिका दी। ज्यादा दिन उसके बिना नहीं रह पाएंगे, उसकी बात में यकीन था और एक उम्मीद भी। कमरे में अब गुस्सा कम था और एक अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे तूफान के बाद सब धीरे धीरे संभल रहा हो।